तक है ये धरती गगन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा, शत शत नमन। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा, स्वीकारिए श्रद्धा सुमन।
ओम शांति। बाबा के यज्ञ में बगरी पाठ का आरंभ हो गया था। काफी महीने उसी स्थिति में रहा। फिर बाद में बाबा मुरलियों में सभी बच्चों को उमंग उत्साह दिलाना शुरू किया कि बच्चे अभी तक जो भी त्याग तपस्या आप लोगों ने की, अपने अंदर शक्तियां भरी, अभी लोगों को ये ज्ञान देने का समय है। क्या आपको अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनाई दे रहा है? आप सभी शिव शक्तियां हो, अपने भक्तों का उद्धार करना है, भारत के जनता को उद्धार करना है। तो ऐसे बहुत बाबा ने उमंग उत्साह सभी के अंदर भरा और ये भी कहा, बच्चे आप सभी मेरे बुझाए हो, आपका बाबा बूढ़ा होता जा रहा है, हम बाबा के बच्चे ही सभी को अभी यज्ञ की संभाल करने की जरूरत है। तो एक तरफ इमोशनली सभी को उस रीति से समझा रहे थे और दूसरे तरफ बाबा ज्ञान भी दे रहे थे कि अभी समय आ गया है ज्ञान गंगाओं को बह करके भक्तों तक पहुंचने की जरूरत है और भक्तों की पुकार सुन करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की जरूरत है। तो ये उमंग उत्साह से भर करके सभी दादियां सोचने लगी कि हमें भी जाना है कि सभी आत्माओं का उद्धार करना है। लेकिन एक तरफ इतना प्यार एग्गी के प्रति, बाबा के प्रति इतना प्यार, मुरली के प्रति इतना प्यार कि एक दिन भी माँ बाबा बाबा की मुरली के बिना वो नहीं रह सकते थे। तो वो सोचते थे कि यहाँ से मधुबन से माउंट आबू से चले जाएंगे तो बाबा की मुरली हम कैसे सुनेंगे, बाबा हमें नहीं दिखाई देंगे, बाबा मिलेंगे नहीं। एक तरफ इतना प्यार प्यार खींच रहा था कि वो प्यार अलाव नहीं कर रहा था उनको यज्ञ से बाहर जाने के लिए, लेकिन दूसरे तरफ बाबा का ज्ञान, इतनी शक्ति और विश्व कल्याण के लिए जो बाबा उमंग उत्साह भर रहे थे, तो वो दूसरे तरफ, तो इस सामंजस्य में, अंदर द्वंद्व में सभी दादियां थी। लेकिन फिर हिम्मत करके एक एक दादी फिर यज्ञ से निकलना शुरू किया, सेवा करने के लिए निकलना शुरू किया। सन 1952 की बात है, दादी प्रकाशमणि जी को अहमदाबाद से निमंत्रण आया सेवा करने के लिए, तो दादी प्रकाशमणि वहां चले गए। फिर उनके पीछे पीछे फिर दीदी मनमोहिनी जी और रुक्मिणी दादी भी अपने लौकिक मित्र संबंधियों के निमंत्रण पर वहां ज्ञान सुनाने के लिए कुंडला चले गए, और संतरी दादी, सती दादी, आनंद किशोर दादा और चंद्रहास दादा अपने लौकिक संबंधियों के निमंत्रण पर आप भी कलकत्ता चले गए। मनोर इंद्रा दादी और गंगे दादी अपने लौकिक निमंत्रण से दिल्ली चले गए, और कमल सुंदरी दादी फिर पुणे चले गए। तो ऐसे अलग अलग दादियां अलग अलग जगहों पर गए, जैसे ब्रह्मा के कहते हैं हजार भुजाएं हैं, तो एक एक भुजा एक एक तरफ गए और सेवा में संलग्न हो गए। लेकिन 14 वर्ष के ज्ञान यज्ञ के कुंड के भीतर योग तपस्या करने के बाद लोगों के यहाँ बाहर जाने का उनका यहाँ पहला अनुभव बड़ा अजीब सा रहा, क्योंकि 14 साल अंदर रहे हैं, यज्ञ में ही रहे हैं, हंसों के बीच में रहे, एकदम बाहर जाने जाते समय दादियों को अंदर से बहुत ही दुख महसूस हो रहा था। उस बारे में दादी कमल सुंदरी जी बहुत सुंदर बताते हैं, अब काफी समय यज्ञ के दैवी वत्सों के साथ पवित्र वातावरण में ही हमारा जीवन बीता था। अब जब फिर अपने लौकिक परिवार की यज्ञ सेवा अर्थ ज्ञान कुंड से बाहर जाने का ईश्वरीय आदेश मिला, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। माउंट आबू के बस स्टॉप पे जाकर के बस पर बैठी जब, तो हम आबू रोड पर पहुंची, तो ये दुनिया की बड़ी अजीब सी, बहुत बड़ा अजीब लगने लगा था। प्यारे बाबा से बिछुड़कर हम पहली बार जा रहे थे, इसलिए मन में एक ओर तो यज्ञ की याद हमें खींच रही थी, दूसरी ओर इस संसार का वातावरण घोर नरक जैसा लगता था, जिसे देखकर मन करता था कि वापस अपने ईश्वरीय कुल के शुद्ध वातावरण में लौट जाएं, जहां पर कि ऐसी अशुद्ध वाइब्रेशंस नाम मात्र भी नहीं है। परंतु सेवा अर्थ जाना ही था, इसलिए मजबूरी महसूस करते हुए रेलगाड़ी में हम सवार हो गए। दादियों को ही 14 साल भट्टी करने के बाद जब लौकिक दुनिया में गए तो उनको इतना अजीब लगने लगा। लेकिन आप सोचिए, शिव बाबा इतना पतित पावन है, पवित्रता का सागर है, एकदम शुद्ध है। शिव बाबा को जब इस पतित दुनिया में आना होगा तो बाबा को कैसे लगता होगा। लेकिन फिर भी शिव बाबा तो रहम दिल है, करुणा का सागर है, दया का सागर है। इतने पतित पावन पवित्रता का सागर होते हुए भी इस पतित दुनिया में आकर के आत्माओं का उद्धार बाबा करते हैं। तो दादी कहते हैं, रेल में लोगों की दृष्टि, वृत्ति, बोल चाल, रहन सहन देखकर ऐसा लगता था कि अब इस संसार में संसार बहुत बिगड़ गया है, मनुष्य बिल्कुल ही देह अभिमानी बन गए हैं। और फिर दादी कहते हैं, बहुत समय यज्ञ कुंड में अंदर रहने के कारण से संसार में क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं था, और फिर कैसा कौन सा सिक्का चल रहा है, कौन सा रुपया चल रहा है, उसके बारे में भी दादियों को पता नहीं था। कुछ भी खरीदने जाना था या फिर बस स्टॉप में अपना किराया भी देना था तो पता नहीं चलता था कि आटाना कौन सा है, 1 रुपया कौन सा है। तो फिर इतने इनोसेंट थे, फिर धीरे धीरे फिर दादियां फिर सब कुछ दुनियादारी भी सीखने लगे। फिर गंगे दादी और मनोहर दादी दिल्ली गए। बाबा हमेशा उन दोनों की जोड़ी हुआ करता था, ये गंगे दादी और मनोहर दादी की जोड़ी होती थी, और उनको हर हर गंगे कहते थे क्योंकि मनोहर दादी का जो लौकिक नाम था वो हरि था, तो और गंगे दादी तो गंगे तो थे ही, तो उन दोनों को मिला करके हर हर गंगे कहते थे। तो बाबा हमेशा कहते थे कि हर हर गंगे, आप लोग नहीं जाएंगे बाब सेवा करने की, आपके भक्त इतना पुकार रहे हैं, आप जाओ। तो दोनों दादियां लौकिक निमंत्रण पर दिल्ली गए। तो दादी कहते हैं, जब हम दिल्ली में अपनी सगे संबंधियों के निमंत्रण पर वहां लौकिक संबंधियों के वहां ठहरे, फिर उन लौकिक संबंधियों को हमने कहा कि बाबा ने कहा है हमें जवाहरलाल नेहरू जी से हमें मिलना है, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के उनसे मिलना है, इंदिरा गांधी जी से मिलना है, वो कह रहे थे। और लौकिक संबंधी हंस रहे थे, इतनी छोटी छोटी कन्याएं और जाकर के भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, ये जाके करेंगे क्या, तो हंसते थे। लेकिन बाबा तो बाबा है, बाबा ने इतने उमंग उत्साह उन दोनों में भर के भेजा था कि नहीं बच्चियां, आपको तो जाना है, उनको संदेश जरूर पहुंचाना है। तो इतनी उमंग उत्साह से, इतना स्वमान भरा था उनके अंदर कि दादियों को ये महसूस नहीं होता था, हम तो क्या है, अपने इतने छोटे हैं, ये महसूस नहीं होता था। उनको लगता था कि हम तो शिव शक्ति है, तो हम जरूर जाकर के मिलेंगे। तो संकल्प करके उन्होंने कहा कि चलो हम भी जाके मिलेंगे। तो दोनों दादियां निकल पड़े जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने के लिए। और फिर काफी समय तक जाने के बाद फिर त्रिमूर्ति भवन में जाकर के पहुंचे, और काफी घंटों तक वहां उन्होंने इंतजार किया। फिर उसके बाद उनको परमिशन मिला, क्योंकि काफी समय से इंतजार कर रहे थे मिलने के लिए। फिर दादियों को परमिशन मिला, बाबा ने नेहरू जी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड तथा कुछ साहित्य ईश्वरीय सौगात के रूप में देने के लिए दादियों को दिया था। तो फिर दादियां जब पहुंची तो फिर को बहुत देर के बाद पहले इंदिरा गांधी जी मिले, तो उन्होंने हमसे पूछा कि ईश्वरीय यज्ञ भारत की क्या सेवा कर रहा है, वहां कितनी माताएं रहती हैं, क्या ज्ञान मिलता है, ये सभी इसके बारे में पूछा। हमने उन्हें ईश्वरीय संदेश तथा माउंट आबू यज्ञ में आने पधारने के लिए निमंत्रण तथा ईश्वरीय साहित्य दिया। फिर हमें नेहरू जी से मिलाया गया, उन्हें हमने ईश्वरीय साहित्य और निमंत्रण के अतिरिक्त वो रिकॉर्ड भी दिया जो बाबा ने भर के दिया था। उस रिकॉर्ड में यज्ञ माता सरस्वती जी का एक दिव्य प्रवचन भरा हुआ था, जिसमें वर्तमान समय की पहचान परमपिता परमात्मा द्वारा हो रहे ईश्वरीय कार्य, आने वाले महाविनाश, जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता आदि आदि के बारे में प्रकाश डाला गया था। हमने उस मुलाकात में उन्हें रिकॉर्ड देते हुए उसका सारा जो भरा हुआ है उसका सारा सार में बताया। इससे देखने में सिद्ध होता है कि बाबा कभी भी फॉलोअर्स नहीं बनाए, जो भी बाबा के इस यज्ञ में आए तो बाबा के बच्चे कहलाए, कोई फॉलोअर्स नहीं। बाबा ने लीडर्स को क्रिएट किया कि इसीलिए फिर ब्रह्मा बाबा भी जब चले गए, दादियां इस यज्ञ के कारोबार को संभाला, तो पहले से ही बाप दादा का ये विजन था, ये दूरान दृष्टि थी। बाबा ने कभी किसी को फॉलोअर्स नहीं बनाया, लीडर्स बनाया। तो बाबा अपने आप को पीछे रह करके दादियों को आगे रखा, और इतने बड़े बड़े वीआईपीस की सेवा करने के लिए छोटी छोटी दादियों को आगे रखा। इतना विशाल हृदय, इसलिए बाबा के लिए कहते हैं आप सब कुछ अपने आप करके फिर अपने आप को छिपाया। इतने गुप्त रीति से, जड़ में रह करके, गुप्त रह करके बच्चों को आगे बढ़ाया। दिल्ली में फिर इतनी सेवाएं कर रहे थे दोनों दादियां, फिर अलग अलग जगह पर जाकर के भाषण भी कर रहे थे। एक प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में जाकर के उन्होंने भाषण किया, 2-3 दिन तक भाषण किया, कि मंदिर के सेक्रेटरी ने फिर दादियों को निमंत्रण दिया और मंदिर के ऊपर एक कमरा दिया वहां रहने के लिए, और वहां जो भी भक्त आते थे उनको ज्ञान सुनाना शुरू किया। और शिव बाबा का चमत्कार था कि सत्संग में आने वाले अनेक नर नारियों को साक्षात्कार होने लगे और लोगों का आकर्षण ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर धूम मच गई कि ये देवियां प्रभु की दीदार कराती है। ये बात ट्रस्टियों के कानों में भी पहुंची। उन्होंने सोचा, आज दिन तक भगवान का साक्षात्कार किसी ने नहीं किया है, जरूर इन बच्चियों के पास कोई जादू है, तो जादू ही दिखाती है। तो लोगों के मन में वो भ्रांति आना शुरू किया, पता नहीं कौन से जादू की छड़ी घुमाती है ये। तो ट्रस्टी के जो बड़े थे भाई, तो उन्होंने दादियों को बुलाया और उनको पूछा कि आप लोग क्या करते हो। कि सभी माताएं कहती हैं, कृष्ण को देखा, स्वर्ग को देखा, विष्णु को देखा, तो हम तुम बताओ, फिर बताओ कि क्या करते हो। तो वो ट्रस्टी बड़ा पढ़ा लिखा था और एक्टिव था। तो दादी ने कहा कि बहुत उनको बहुत समझाया, हम तो कुछ नहीं करती, सिर्फ ज्ञान और योग सिखाते हैं हम, लेकिन वो विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर दादी ने वो कल्प वृक्ष का जो चित्र है हमारा 7 डेज कोर्स में, जो कल्प वृक्ष का चित्र है, उसको निकाल करके उसके ऊपर फिर समझाना शुरू किया। फिर वो ट्रस्टी का नजर जो है वो चित्र के नीचे छोटे छोटे अक्षरों पर उसका नजर गया। छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया था कि रामायण इज अ नॉवेल, रामायण एक उपन्यास है, इस रीति से लिखा था। तो उसको देख करके उस ट्रस्टी को बहुत गुस्सा आया कि आप यहाँ इस मंदिर में रहते हो। और वो ट्रस्टी बहुत बड़ा राम का भगत था, तो उसने कहा कि इसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने बोला कि या तो ये लिखत जो है उसको निकालो, या फिर इस चित्र को निकालो, या फिर अभी दोनों को नहीं निकाल सकते तो आप निकल जाओ यहाँ से, इस मंदिर से। तो दादी ने सोचा बहुत मुश्किल से सेवा करने के लिए जगह मिली है और अचानक यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो फिर वो गुस्से से लाल लाल हो रहा था। तो हमने वो लिखत ही निकाल दी, वो चित्र के नीचे जो लिखत था उसको फिर मिटा दिया। फिर सारा समाचार बाबा को लिखा कि दादिया, तो सब कुछ जो भी समाचार होता था तो दादी बाबा को लिखते थे। तो बाबा को सारा समाचार लिखा, बाबा ऐसा ऐसा हुआ तो हमने ये सारे लिखत निकाल दी। तो बाबा ने उत्तर में लिखा कि तुम दोनों बेड़ बकरियां हो, क्योंकि तुमने अपने हाथों से भगवान के महावाक्य की चिटकी उतारी है। तो हमने बाबा को कई कारण बताए, लेकिन बाबा ने कारण नहीं सुना और ही ये टाइटल दे दी, तुम बेड़ बकरिया हो। तो माना बाबा कितना अटूट अटल थे, इतना जैसे ज्ञान के पक्के थे, चाहे लोग कैसे भी सोचे, कुछ भी सोचे, लेकिन सत्य भगवान का सत्य ज्ञान है ये। तो वो सत्य ज्ञान सुनाने के लिए हमेशा बाबा प्रेरित करते थे। तो तो दादी कहते हैं 2 मास रहने के बाद वो उस मंदिर में 2 मास रहे, वहां सेवा किया, फिर अपने आप उन्होंने कहा कि यहाँ अब आपको दूसरा प्रबंध कर लेना चाहिए कि क्योंकि यहाँ और कोई महात्मा आने वाले हैं। तो फिर दादिया उस मंदिर से निकल गए और फिर जमुना कंटे पर एक मकान मिल गया। वहां तो मकान में केवल 2 दीवारें थी, दरवाजे दोनों तरफ नहीं थे, तो दोनों कच्चे दीवार थे और दोनों तरफ दीवार दरवाजा नहीं था। और दादियां वहां पहुंची तो फिर दादियों को लगने लगा कि पता नहीं कहाँ पहुंच गए हम। बाबा इतने लाड प्यार से पाल के रखा था दादियों को, अभी एकदम अभी जमुना किनारे पर एक टूटे फूटे मकान में जैसे लगा कि मृत्यु लोक में हम पहुंच गए। हम 2 ही बहन थी। जमुना घाट के उस मकान में एक बहन रात को एक बहन सोती थी और एक बहन पहरा देती थी। ऐसे करते करते हमने 2-4 दिन बिता दिया। वहां पास में ही एक पहलवान का अड्डा था, वहां लोग प्रैक्टिस करते थे पहलवानी। उसने सोचा ये देविया कौन है, या घाट पर आकर बैठी है, उनको डर भी नहीं लगता है। उसको मानो परमात्मा ने टच किया कि तुम्हारे घाट पर जो देवियां हैं, तुम्हारा काम है इनकी संभाल करना, उनको सिक्योरिटी देना। तो वो रात्रि को रोज हमारे पास आकर के वो पहरा देने लगे घूम घूम करके। हम सोचते थे ये पहरा किस पर लगाते हैं, ये तो सोचते नहीं थे हमारे पर लगाते हैं। हमने सोचा धन माल आदि कुछ भी यहाँ नहीं है चारों तरफ, फिर भी पैरा क्यों। फिर कुछ समय बाद पहलवानों के आपस में कुश्ती कुश्ती का जो कंपटीशन होता है वो हुआ। उस पहलवान को संकल्प आया कि मैं जिन देवियों की सेवा कर रहा था, अगर ये सच्ची होंगी तो जरूर मेरी जीत होगी, क्योंकि मैं निष्काम सेवा कर रहा हूँ। अगर मेरी हार होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि इनमें कोई सत्यता की शक्ति नहीं है। ड्रामा अनुसार उनकी जीत हो गई, वे बहुत खुश हो गए, वो पहलवान बहुत खुश हो गए। अपने साथ 10-12 पहलवानों को लेकर आए और दंडवत प्रणाम किया। वे दूध चीनी नारियल और 20 रुपए भी साथ ले आए भेंट चढ़ाने के लिए। हमने 14 साल किसी अन्य का अन्न नहीं खाया था। हमने कहा भैया आपकी मनोकामना बाबा ने पूरी की, यह सबसे अच्छी बात है, परंतु आपकी ये सब चीजें तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमारी भावना को ठेस नहीं लग दीजिए ठेस लगेगी, कैसे भी करके उसको स्वीकार कर लीजिए। फिर हमने उस सामान से खीर बनाई, उनको भी खिलाया, बाबा को याद किया और फिर हमने भी थोड़ा स्वीकार किया। इस प्रकार ईश्वरीय सेवा होने लगी। तो बाबा कैसे, बाबा के बच्चों के द्वारा बाबा अनेक लोगों को साक्षात्कार कराया, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की और अलग अलग रीति से बाबा ने अपना संदेश बच्चों तक पहुंचाया दादियों के द्वारा। फिर दादियां कहती हैं जैसे जैसे लोगों को सेवा समाचार मिलने लगे तो कहीं लोग जमुना घाट पर आने लगे, काफी लोग हो गए। लाला जगन्नाथ जी जो कि दिल्ली में एक प्रसिद्ध रईस है और उन्होंने दिल्ली में एक क्लॉक टावर भी बनाया था उस समय, और उनकी माताजी भी रोज गंगा जमुना घाट पर आते थे स्नान करने के लिए। वो शहर की मानी हुई माता थी, उसकी एक बहुत बड़ी धर्मशाला भी थी। उसने जब हमें देखा कि 2 देवियां यहाँ अकेली रहती हैं, तो प्यार से शहर के बीच ले गई। वह एक कमरे में हम रहने लगे, धर्मशाला पास था। वह सत्संग बहुत बढ़ गया, जब हम योग कराते थे बहुत सारी माताएं बहनें ध्यान में चली जाती थी। भगवान के पास
ये दिव्य दृष्टि के चाबी होता था तो भगवान बाबा बहुत मदद करते थे सभी को, सभी को साक्षात्कार में ले जाते थे। फिर उसने हम फिर ये जो समाचार है इंदिरा गांधी जी तक ये समाचार पहुंच गया। फिर उसने हम पर सीआईडी लगाई, चार माताओं को हमारे पास निरीक्षण के लिए भेजा। वे वहां आकर चारों ओर देखती रहती थी। उनको सत्यता का आभास हुआ कि ये बहनें कोई जादू या हिप्नोटाइज आदि नहीं करती है। उन्होंने माताओं बहनों से अनुभव भी पूछा। अनुभव सुनकर उनको निश्चय हुआ कि यहाँ भगवान का कार्य चल रहा है और ये बहनें छल कपट नहीं करती, यह निष्काम सेवा करती है। इसलिए इंदिरा गांधी जी तथा नेहरू तक हमारी अच्छी रिपोर्ट गई। लेकिन उनमें से एक माता ने गलत रिपोर्ट पहुंचाया तो उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा कि आंखें खोलकर योग कराती है, ये कौन सा योग है पता नहीं। तो इसके कारण से हंगामा शुरू हो गया। तो ऐसे करते करते उस समय के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी तक ये रिपोर्ट पहुंच गया। जब हम उनके उनसे मिलने गए तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप कहाँ से आई हो, क्या सिखाती हो, कैसा आपका योग है। हमने उनके उनके सब प्रश्नों का उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि आपका सब अच्छा काम चल रहा है, आप अच्छा काम करती हो, लेकिन आपकी रिपोर्ट हमारे पास आई है। हमने कहा कि हम तो कुछ नहीं करती, ये सब भगवान का काम है। तो उस रीति से बड़े बड़ों तक बाबा का संदेश पहुंच गया, भारत के राष्ट्रपति जी तक भी ये संदेश पहुंच गया। कुछ ही महीनों में, जैसे 2-3 महीने में ही ये सारा संदेश बड़ों बड़ों तक बाबा ने दादियों के द्वारा पहुंचाया कि सारा जो काम है बाबा ने किया, लेकिन नाम मात्र केवल दादियों को आगे रख कर के बाबा ने ये सारा काम बहुत जल्दी जल्दी कार्य कर रहे थे। फिर दादी कहते हैं तो ऐसे सेवा करने के 6-8 मास के बाद हम पुनः लौटकर मधुबन आ गए। दूसरे यज्ञ वत्स भी इस प्रकार कुछ एक दिन सेवा करके लौट आए मधुबन वापस। बाबा ने जब हमें आते हुए देखा तो बहुत प्यार से बोले, बच्ची सेवा क्षेत्र से वापस पहुंच गई, तुमने बेहद बाप के ज्ञान रत्नों का एक भी दुकान नहीं जमाया। जरूर बच्चों में अभी तक योग बल की कमी है, इसलिए दुकान समाप्त कर लौट आए हो। क्योंकि दादियों को तो खींच थी बाबा पहुंच जाए, बाबा के पास पहुंच जाए, थोड़ा बहुत निमित मात्र जो सेवा थी वो करके भाग भाग करके फिर पहुंच गई बाबा के पास। फिर बाबा तो फिर उमंग उत्साह भरने लगे, एक भी दुकान नहीं जमाया आप लोगों ने। ये सुनकर मैंने बाबा को बोला, बाबा धर्म की स्थापना में अनेक कठिनाइयां आई, नया निराला ज्ञान सुन लोगों ने बहुत भ्रांतियां फैला दी है, विघ्न बहुत पड़ रहे हैं, मकान देने वाले भी हिम्मत नहीं करते, आखिर वो हमसे मकान खाली करवा लेते हैं, इसलिए हम लौट आए हैं। क्योंकि उन दिनों में बहुत सारे भ्रांतियां चली थी तो इसलिए बहुत मुश्किलें आ रही थी। फिर बाबा ने बोला, बच्ची धैर्य रखो, अभी तो लोग विघ्न डालेंगे, यज्ञ रचा हुआ है तो असुर तो विघ्न डालेंगे ही, आगे चल तुम देखना अनेक सेंटर खुलेंगे, 108 से भी ज्यादा सेंटर खुलेंगे। उस टाइम का महावाक्य है, अभी देखेंगे तो 108 देशों से भी ज्यादा देशों में बाबा के सेंटर्स खुल गए हैं। गली गली में, देश विदेश में शिव बाबा का झंडा लहराएगा, वो दिन भी आने वाला है। बाबा के ये शब्द सुनकर एक और बेहद हर्ष हुआ, लेकिन दूसरे ओर अद्भुत आश्चर्य भी कि कैसे देश विदेश में सेंटर्स खुलेंगे, कौन वहां सेवा करेगा, क्योंकि वो बहुत छोटे रूप था सेवा का उस टाइम पे, तो दादियों को आश्चर्य लगता था ऐसे कैसे हो सकता है, तो एक सेंटर खोलने में ही इतना मुश्किल आते, इतने विघ्न आ रहे हैं, तो अनेकों में क्या, अनेक सेंटर खोलने में क्या होगा। परंतु ये हमें अटल निश्चय भी था कि बाबा ने कहा है तो टल नहीं सकता, ये बहुत जरूर ये सिद्ध होगा, अवश्य ही होकर रहेगा। इसलिए निमंत्रण मिलने पर उमंग उत्साह के पंखों से हम पुनः दिल्ली पहुंच गए और चारों ओर निश्चय के साथ सेवा की धूम मचाई। जहां 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 मौका मिला हम गए और बाबा का संदेश सुनाया। ऐसे अलग अलग दादियां अलग अलग जगह पर जाकर के सेंटर्स खोले, कि यहाँ दिल्ली में कमला नगर में सेंटर खुला, फिर इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में भी सेंटर खुला, और फिर गुड़गांव, मेरठ, सहारनपुर आदि अलग अलग जगहों पर निमंत्रण आया। फिर अलग अलग दादियां वहां जाकर के सेंटर्स खोले और फिर भाई बहनों को बाबा का संदेश देना शुरू किया। फिर लखनऊ में जो दादी गए थे, तो दादी कहते हैं कि लखनऊ में भी वहां गए थे और धर्म, एक धर्मशाला में वहां बाबा के ज्ञान देना शुरू किया, सत्संग करना शुरू किया, वहां भी साक्षात्कार करने लगे लोग, कि वहां सब जगह पे साक्षात्कार की धूम मची हुई थी, जहां भी दादियां जाती ज्ञान देते सब साक्षात्कार में चले जाते थे, कुछ लोग जाते कुछ लोग नहीं जाते, तो वहां भी लखनऊ में भी वहां धूम मच गई थी साक्षात्कार की। तो धर्मशाला की मालकिन माता हमसे बहुत आग्रह करने लगी कि मुझे श्री कृष्ण का दीदार कराओ। तो हमने उससे बहुत समझाया कि ये तो शिव बाबा की शक्ति है, हमारे पास वो दीदार कराने की शक्ति नहीं है, तो शिव बाबा ही करा सकते हैं। परंतु वो एक ना मानी, आखिर उसने 3 दिन तक व्रत रखा, अखंड तपस्या की, फिर शिव बाबा ने उसकी इच्छा पूर्ण की, वो ध्यान स्थित हो गए दीदार, फिर वो ट्रांस में चली गई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया कि बाबा अपने भक्तों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, कि बाबा को जिस लक्ष्य से, जिस इच्छा से याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उस इच्छा को जरूर बाबा पूर्ण करते हैं। इस माता ने केवल एक साक्षात्कार की इच्छा रखी तो बाबा ने उसको पूर्ण किया, लेकिन साक्षात्कार की इच्छा की जगह पर कुछ और मांग लेती, या फिर बादशाही मांग लेती, स्वर्ग की बादशाही मांग लेती, तो बाबा वो भी दे देते। तो इसीलिए हमें हमेशा ये सोचने की जरूरत है, भगवान खुद हमारे पास आए हुए हैं, हमारे सामने खड़े हैं, स्वर्ग की बादशाही लेके आए हैं, इतना अथाह देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी जगह पर क्या हम मुट्ठी भर कुछ रत्न मांग रहे हैं, थोड़े बहुत अल्पकाल की खुशी मांग रहे हैं या भौतिक सुख मांग रहे हैं। तो बाबा तो अथाह देने के लिए तैयार है, लेकिन हम कहते हैं बाबा हम तो बूंद से ही संतुष्ट है। तो इसीलिए ये माता बूंद मांगी, साक्षात्कार मांगी तो साक्षात्कार करा दिया, लेकिन हमें तो ये समझ है कि बाबा सागर हमारे सामने है, हम इन बूंद से हम संतुष्ट नहीं हो, कि बाबा जो भी दे रहे हैं सब कुछ हम अपने अंदर धारण करें, बाबा की उम्मीद पर हम उतर आए और स्वर्ग की बादशाही हम जरूर प्राप्त करें। तो फिर दादी दूसरा कुछ और एक प्रसंग है, तो बाबा दादी कहते हैं एक बार जब हम लखनऊ लखनऊ से फिर वापस आ रहे थे, बहुत दिनों तक वहाँ सेवाएं की लखनऊ में, फिर बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुए मधुबन आने के लिए, माउंट आबू आने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि बहुत दिन हो गया मधुबन नहीं गए हैं, तो चलो हम ही जा करके आ जाए, कोई जिज्ञासु आए या ना आए हम चले जाए। तो फिर मनोहर दादी और गुलजार दादी दोनों ही ट्रेन पे चढ़ गए। ट्रेन में जब चढ़े तो एक भोली सी माता जो गांव में रहती है, भोली भाली, थोड़ा बहुत ज्ञान सुनी होगी और उसको पता चल गया होगा दादियां मधुबन जा रही हैं, तो वो आकर के पहुंच गए स्टेशन पर, तो मुझे भी चलना है मधुबन। तो फिर दादियां सोची कि चलो कोई और जिज्ञासु नहीं सही, ये भोली भाली घावड़ी घावड़े वाली माता ही सही, तो उनको बिठा दिया। तो फिर ट्रेन में सफर करते समय सारा ज्ञान सुनाया, पक्का कराया कि बाबा ये प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे, इसका जवाब ये देना है, वो देना है, सारा पक्का करा करके उस माता को ले गए। तो मधुबन पहुंचे तो बाबा से मिले दोनों दादियां। फिर बाबा ने पूछा, बच्चिया और आप दोनों अकेले आए हो, कोई गुलदस्ता नहीं लाए हो, फूल बना करके गुलदस्ता नहीं लाए? तो दादियों ने कहा कि बाबा कोई तो तैयारी नहीं थे, तो इसलिए हम ही चले आए आपसे मिलने के लिए। फिर दादियों ने कहा कि एक माता आए आई है। तो फिर बाबा ने कहा कि चलो माता को ले आओ। तो माता थोड़ा स्नान करने गए थे, फ्रेश होने गए थे, तो स्नान पानी सब करके फिर बाबा के सामने आई। तो बाबा से जब मिली बहुत उमंग उत्साह से, जैसे तल्लीन, जैसे मग्न हो गए बाबा की दृष्टि में, इतने मग्न हो करके रूहानी मुलाकात करने लगी। तो बाबा ने उसको देखा और कहा, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये कोई विशेष आत्मा है, बिछड़ी हुई आत्मा है जिसने फट से बाबा को पहचान लिया है। बाबा ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? माता ने धीरे से कहा, शांति देवी। बाबा ने कहा, बच्ची का जैसा नाम है वैसा ही गुण है। बाबा ने फिर पूछा, बच्ची पहले तुम बाबा से कभी मिले हो? माता ने कहा, हाँ बाबा, मैं आपसे 5000 वर्ष पहले इसी स्थान पर मिली थी। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची तुमने किस तुमको कितने बच्चे हैं? तो वो बोली, बाबा एक ही बच्चा है। बाबा बोले, बच्ची वो क्या करता है? वो बोली, मेरा तो शिव बाबा ही बच्चा है जो विश्व का कल्याण करता है। मेरा एक बच्चा शिव बाबा, वो विश्व का कल्याण करता है। कितने नशे से उसने बोला। तब बाबा ने कहा, बच्ची ये तो बड़ी निश्चय बुद्धि आत्मा है, शांत मूरत है। बाबा इसको डायरेक्शन देता है, हर रोज भंडारे में जाकर भोजन को योग की दृष्टि दो और सबको बाप की स्मृति दिलाओ। बाबा की ये बातें सुन प्यार के सागर रहम दिल बाप की रहम दिली का अनुभव हुआ। बाबा कितना गरीब निवास है जो गरीब बच्चों को इतना ऊंचा उठा देते हैं कि बाबा शरीर को नहीं देखते थे। इतनी बोली भाली सी गरीब गावड़े वाली आत्मा माता वो बाबा के पास आई तो बाबा ने उसके शरीर को नहीं देखा, आत्मा को देखा, उसके उमंग उत्साह को देखा, उसके निश्चय को देखा, आत्मा की क्वालिटी को देखा। और बाबा ने कहां से उठा करके, अर्श से उठा कर, फर्श से उठा करके अर्श पर बिठा दिया। बाबा ने उस आत्मा को, उस माता को इतना अच्छी ड्यूटी दी, सभी को बाबा की याद दिलाने की और ब्रह्मा भोजन को दृष्टि देने की जो ड्यूटी बाबा ने दिया, ऐसे रहम दिल हमारे बाबा थे। ओम शांति।
बलिहारी प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा तन में रह कर तन से परे बाबा तूने बताया तन में रह कर तन से परे बाबा तूने बताया तेरे शुभ कर्मों की गति ने भगवान से मिलाया हर दिल पे है जादू तेरा हो जाते बलिहारी हर दिल पे है जादू तेरा हो जाते बलिहारी प्यारे बाबा